अक्टूबर 2021 की प्रहेदुर्ग अध्ययन लेख 40। इस लेख का अध्ययन 6 से 12 दिसंबर के दौरान किया जाएगा। विषय, दिल से पश्चाताप करने का क्या मतलब है। ये लेख लूका 5 के 32 पर आधारित है, जहां लिखा है, मैं पापियों को बुलाने आया हूं कि वो पश्चाताप करें। गीत 36। दिल का नाता है जीवन से। लेख की एक झलक, पश्चाताप करना सिर्फ अपने किए पर अफसोस करना नहीं है। हम राजा आहाब, मनश्शे और खोए हुए बेटे की मिसाल से सीखेंगे कि दिल से पश्चाताप करने का क्या मतलब है। हम ये भी जानेंगे कि जब एक व्यक्ति पाप करता है तो प्राचीन कैसे जान सकते हैं कि उसे सच में अपने किए पर पछतावा है या नहीं। पैराग्राफ 1 और 2। सवाल क, राजा अहाब और मनश्शे में क्या फर्क था। सवाल ख, इस लेख में हम क्या चर्चा करेंगे। पुराने जमाने में दो राजा थे, एक इज़राइल का राजा था और दूसरा यहूदा का। ये दोनों राजा अलग अलग समय में जिए थे, लेकिन इनमें बहुत सी बातें एक जैसी थी। दोनों राजाओं ने परमेश्वर के खिलाफ काम किया था और उनकी वजह से परमेश्वर के लोगों ने गलत काम किए। उन राजाओं ने मूर्ति पूजा की और लोगों की हत्या की, लेकिन उन दोनों राजाओं में एक बात अलग थी। एक राजा मरते दम तक बुरे काम करता रहा, लेकिन दूसरे राजा ने अपनी गलती मानी और पश्चाताप किया। इस वजह से यहोवा ने उसे माफ कर दिया। ये राजा कौन थे? इज़राइल का राजा अहाब और यहूदा का राजा मनश्शे। हम इन दोनों राजाओं की कहानी से सीखेंगे कि पश्चाताप करने का क्या मतलब है और हम कैसे दिखा सकते हैं कि हमें अपने किए पर सच में पछतावा है। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमसे भी पाप हो सकता है और हम चाहते हैं कि यहोवा हमें माफ करे। हम इस लेख में ये भी जानेंगे कि यीशु ने पश्चाताप करने के बारे में क्या सिखाया था। राजा अहाब। पैराग्राफ 3। सवाल, अहाब कैसा राजा था? अहाब इज़राइल का 7वां राजा था। उसने सिदोन के राजा की बेटी इज़ेबेल से शादी की थी। इस शादी की वजह से इज़राइल राज्य को मुनाफा तो हुआ, लेकिन नुकसान ज्यादा हुआ। इज़राइली यहोवा के खिलाफ और भी पाप करने लगे। इज़ेबेल बाल की उपासना करती थी और उसने अहाब के जरिए पूरे देश में बाल की उपासना फैला दी। ये उपासना इतनी घिनौनी थी कि बाल के मंदिरों में वेश्याएं रहती थी और बच्चों की बलि चढ़ाई जाती थी। इज़ेबेल ने यहोवा के कई भविष्यवक्ताओं को जान से भी मरवा डाला। अहाब ने भी बहुत से बुरे काम किए थे, इसलिए पहला राजा 16:30 में बताया है कि अहाब यहोवा की नजर में उन सभी राजाओं से बदतर निकला जो उससे पहले हुए थे। यहोवा को पता था कि अहाब और इज़ेबेल क्या कर रहे हैं, फिर भी उसने उन पर दया की। उसने भविष्यवक्ता एलिया को भेजकर उन्हें और दूसरे लोगों को चेतावनी दी, लेकिन अहाब और इज़ेबेल ने किसी की नहीं सुनी। पैराग्राफ 4। सवाल, यहोवा ने क्या सजा सुनाई और अहाब ने क्या किया? आखिरकार यहोवा के सब्र का बांध टूट गया। उसने एलिया के जरिए अहाब और इज़ेबेल को बताया कि वो उनके खानदान को पूरी तरह मिटा देगा। ये बात अहाब को बुरी तरह लग गई और वो घमंडी राजा नम्र बन गया। पहला राजा 21:19-29। पैराग्राफ 5 और 6। क्या अहाब को सच में अपने किए पर पछतावा था? समझाइए। ये बात सच है कि अहाब ने उस वक्त खुद को नम्र किया, लेकिन उसने बाद में जो किया उससे पता चलता है कि उसे सच में अपने किए पर पछतावा नहीं था। उसने अपने राज्य से बाल की उपासना नहीं हटाई, ना ही उसने लोगों को यहोवा की उपासना करने का बढ़ावा दिया। उसने और भी बहुत कुछ किया जिससे पता चलता है कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। कुछ समय बाद अहाब ने यहूदा के राजा यहोशापात से कहा कि वो सीरिया के खिलाफ युद्ध करने में उसका साथ दे। यहोशापात एक अच्छा राजा था, इसलिए उसने कहा कि उन्हें इस मामले में यहोवा के भविष्यवक्ता से सलाह लेनी चाहिए। अहाब ऐसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसने कहा, एक और आदमी है जिसके जरिए हम यहोवा से सलाह मांग सकते हैं, मगर मुझे उस आदमी से नफरत है। वो मेरे बारे में कभी अच्छी बातों की भविष्यवाणी नहीं करता। صرف بری باتیں کہتا ہے. پھر بھی احاب مان گیا اور دونوں راجاؤں نے بھوشوکتا مکایا سے صلاح لی. جیسا آپ نے کہا تھا، بھوشوکتا نے اس کے بارے میں بری خبر سنائی. یہ سن کر خود کو بدلنے کے بجائے احاب نے بھوشوکتا کو ہی قید میں ڈال دیا. حالانکہ اس نے بھوشوکتا کا منہ بند کروا دیا، لیکن وہ یہوہ کی بات کو پورا ہونے سے نہیں روک پایا. اسی یدھ میں احاب کی موت ہو گئی. پیراگراف 5 اور 6 سے سمبندھت تصویر کے بارے میں، راجا احاب غصے میں آ کر اپنے آدمیوں سے کہتا ہے کہ وہ یہوہ کے بھوشوکتا مکایا کو قید میں ڈال دیں. چتر شیرشک، راجا احاب کو اپنے کیے پر دل سے پچھتاوا نہیں تھا، اس لیے اس نے مکایا کو قید میں ڈلوا دیا. پیراگراف 7، سوال، یہوہ نے احاب کے بارے میں کیا کہا؟ یدھ کے بعد جب راجا یہوشاپات صحیح سلامت اپنے محل پہنچا تو یہوہ نے اپنے بھوشوکتا یہو کے ذریعے اسے بتایا کہ وہ احاب کے بارے میں کیا سوچتا ہے. یہو نے راجا کو ڈانٹتے ہوئے کہا، کیا تجھے ایک دشٹ کی مدد کرنی چاہیے اور ان لوگوں سے پیار کرنا چاہیے جو یہوہ سے نفرت کرتے ہیں؟ دوسرا اتہاس 19:1-2. ذرا سوچئے، اگر احاب نے دل سے پشچاتاپ کیا ہوتا تو کیا یہوہ اسے دشٹ کہتا؟ کیا وہ اسے ان لوگوں میں گنتا جو اس سے نفرت کرتے ہیں؟ حالانکہ احاب کو اپنی غلطی کا افسوس تھا، لیکن اس نے پشچاتاپ نہیں کیا. پیراگراف 8، سوال، راجا احاب کی کہانی سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ ہم احاب سے کیا سیکھتے ہیں؟ ہم سیکھتے ہیں کہ پشچاتاپ کرنے کے لیے صرف اپنے کیے پر افسوس کرنا کافی نہیں ہے، ہمیں اور بھی کچھ کرنا ہوگا. آئیے اس بارے میں راجا منشے سے سیکھیں. راجا منشے، پیراگراف 9، سوال، منشے کیسا راجا تھا؟ قریب 200 سال بعد منشے یہودا کا راجا بنا. اس نے شاید احاب سے بھی زیادہ برے کام کیے، اس لیے اس کے بارے میں کہا گیا، اس نے ایسے کام کرنے میں ساری حدیں پار کر دی جو یہوہ کی نظر میں برے تھے، اور اس کا کروھ بھڑکایا. دوسرا اتہاس 33:1-9. اس نے جھوٹے دیوی دیوتاؤں کے لیے ویدیاں بنائی اور یہوہ کے مندر کے اندر ایک پوجا لاٹ کھڑی کی جو شاید پرجنن دیوی کی مورتی تھی. اس نے جادو، جوتشی کا کام اور ٹونا ٹوٹکا کیا. اس نے بے حساب معصوموں کا خون بہایا، یہاں تک کہ اس نے جھوٹے دیوی دیوتاؤں کے لیے اپنے بیٹوں کو آگ میں ہوم کر دیا. دوسرا راجا 21:16. پیراگراف 10، سوال، یہوہ نے منشے کو کیسے سدھارا اور منشے نے کیا کیا؟ یہوہ نے منشے کو چیتاونی دینے کے لیے اپنے کئی بھوشوکتا بھیجے، لیکن اس نے احاب کی طرح ان کی باتوں پر کوئی دھیان نہیں دیا. اس لیے یہوہ نے اشور کے راجا کے سیناپتیوں سے یہودا پر حملہ کروایا. انہوں نے منشے کو پکڑ لیا، اسے نکیل ڈالی اور تانبے کی 2 بیڑیوں سے جکڑ کر بیبیلون لے گئے. جب منشے قید تھا تو اس نے اپنے کاموں کے بارے میں سوچا. اس نے اپنے پرکھوں کے پرمیشر کے سامنے خود کو بہت نمر کیا. اتنا ہی نہیں، اس نے اپنے پرمیشر یہوہ سے رحم کی بھیک مانگی اور اس سے پرارتھنا کرتا رہا. دھیرے دھیرے منشے کا من بدلنے لگا، وہ یہوہ کو اپنا پرمیشر ماننے لگا. دوسرا اتہاس 33:10-13. پیراگراف 11، سوال، دوسرا اتہاس 33:15 اور 16 سے کیسے پتا چلتا ہے کہ منشے کو اپنے کیے پر سچ میں پچھتاوا تھا؟ یہوہ نے دیکھا کہ منشے کا من سچ میں بدل گیا ہے، اس لیے اس نے اسے معاف کیا اور کچھ سمے بعد اسے اس کی راجگدی لوٹا دی. راجا بننے کے بعد منشے نے یہ دکھایا کہ اسے اپنے کیے پر سچ مچ پچھتاوا ہے. اس نے وہ کیا جو احاب نے نہیں کیا تھا، اس نے خود کو بدلا، اپنے راجیہ سے جھوٹی اپاسنا نکالنے کی کوشش کی اور لوگوں کو سچی اپاسنا کرنے کا بڑھاوا دیا. دوسرا اتہاس 33:15 اور 16 میں لکھا ہے، اس نے پرائے دیوتاؤں کی مورتیں، یہوہ کے بھون میں رکھی مورت اور وہ سبھی ویدیاں نکال دی جو اس نے یہوہ کے بھون کے پہاڑ پر اور یروشلم میں بنوائی تھی. اس نے ساری چیزیں شہر کے باہر پھینکوا دی. پھر اس نے یہوہ کی ویدی تیار کی اور اس پر شانتی بلیاں اور دھنیواد بلیاں چڑھانے لگا. اس نے یہودا کے لوگوں سے کہا کہ وہ اسرائیل کے پرمیشر یہوہ کی سیوا کریں. ये सब करना उसके लिए आसान नहीं था, क्योंकि उसने अपनी पूरी जवानी बुरे बुरे काम किए और अपने परिवार वालों, मंत्रियों और लोगों के लिए बुरी मिसाल रखी। लेकिन अपने बुढ़ापे में उसने यहोवा पर विश्वास रखकर और हिम्मत जुटाकर अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश की। शायद इस सब का उसके पोते योशिया पर अच्छा असर पड़ा, क्योंकि बाद में वो एक अच्छा राजा बना। पैराग्राफ 11 से संबंधित तस्वीर के बारे में, राजा मनश्शे ने यहोवा के मंदिर में जितनी भी मूर्तियां खड़ी करवाई थी उन्हें वो अपने आदमियों से कहकर तुड़वा रहा है। चित्र शीर्षक, राजा मनश्शे को अपने किए पर दिल से पछतावा था, इसलिए उसने झूठी उपासना मिटाने की कोशिश की। पैराग्राफ 12। सवाल, पश्चाताप करने के बारे में हम मनश्शे से क्या सीखते हैं? मनश्शे से हम क्या सीखते हैं? मनश्शे ने खुद को नम्र किया, लेकिन उसके साथ साथ उसने और भी बहुत कुछ किया। उसने यहोवा से प्रार्थना की, रहम की भीख मांगी, खुद को बदला, अपनी गलती सुधारने की कोशिश की, यहोवा की उपासना की और दूसरों को भी उसकी उपासना करने का बढ़ावा दिया। मनश्शे के उदाहरण से हम सीखते हैं कि जो लोग बुरे से बुरे पाप करते हैं उन्हें भी माफी मिल सकती है, क्योंकि यहोवा भला है और माफ करने को तत्पर रहता है। भजन 86:5। लेकिन उन्हें अपने किए पर दिल से पश्चाताप करना चाहिए। पैराग्राफ 13। एक उदाहरण देकर समझाइए कि पश्चाताप करने के लिए क्या करना काफी नहीं है। दिल से पश्चाताप करने के लिए सिर्फ अफसोस होना काफी नहीं है। इसे समझने के लिए आइए एक उदाहरण लेते हैं। आप एक मिठाई की दुकान में जाते हैं और दुकानदार से गुलाब जामुन मांगते हैं, लेकिन दुकानदार आपको गुलाब जामुन देने के बजाय शक्कर थमा देता है। क्या आप उसे लेकर आ जाएंगे? नहीं। अगर दुकानदार आपसे कहता है कि शक्कर गुलाब जामुन बनाने के लिए बहुत जरूरी है, तो क्या आप मान जाएंगे? बिल्कुल नहीं। उसी तरह अपने किए पर अफसोस होना अच्छी बात है, लेकिन ये काफी नहीं है। यहोवा चाहता है कि हमें दिल से अपने किए पर पछतावा हो। इसका क्या मतलब है? यीशु ने खोए हुए बेटे की जो मिसाल दी, आइए उससे जाने। कैसे जाने कि एक व्यक्ति को दिल से पछतावा है? पैराग्राफ 14। सवाल, यीशु की कहानी से कैसे पता चलता है कि बेटे को अपने किए पर अफसोस था? लूका 15:11-32 में खोए हुए बेटे की मिसाल दी गई है। ये बेटा अपने पिता का घर छोड़कर किसी दूर देश चला जाता है और वहां पर अय्याशी की जिंदगी जीता है। जब उस पर मुसीबत टूट पड़ती है तो उसकी अक्ल ठिकाने आ जाती है। उसे एहसास होता है कि उसने गलत किया। वो याद करता है कि वो अपने पिता के घर कितना खुश था। वो फैसला करता है कि वो घर जाएगा और अपने पिता से माफी मांगेगा। ये अच्छी बात थी कि बेटे को एहसास हुआ कि उसने गलती की है, लेकिन ये काफी नहीं था। उसे खुद को भी बदलना था। पैराग्राफ 15। सवाल, यीशु की मिसाल में बेटे ने ऐसा क्या किया जिससे पता चलता है कि उसे दिल से पछतावा था? उस खोए हुए बेटे को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है, इसीलिए वो इतना लंबा सफर तय करके अपने घर वापस जाता है। उसके बाद वो अपने पिता से मिलता है और कहता है, मैंने स्वर्ग के और तेरे खिलाफ पाप किया है, मैं इस लायक नहीं कि तेरा बेटा कहलाऊं। लूका 15:21। उसकी बातों से पता चलता है कि वो यहोवा के साथ अपना रिश्ता सुधारना चाहता है। वो ये भी मानता है कि उसने अपने पिता को बहुत दुख पहुंचाया है। वो अपने पिता के साथ अपना रिश्ता सुधारने के लिए उसके यहां काम करने के लिए भी तैयार हो जाता है। यीशु की ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, इससे प्राचीन बहुत कुछ सीख सकते हैं, खासकर तब जब किसी भाई या बहन से कोई पाप हो जाता है और वो ये जानना चाहते हैं कि उसे सच में अपने किए पर पछतावा है या नहीं। पैराग्राफ 14 और 15 से संबंधित तस्वीर के बारे में, यीशु की कहानी में बताया बेटा लंबा सफर तय करके थक गया है, लेकिन जब वो दूर से अपना घर देखता है तो उसे खुशी होती है। चित्र शीर्षक, जब खोए हुए बेटे की अक्ल ठिकाने आई तो वो घर लौट आया। पैराग्राफ 16। सवाल, प्राचीनों के लिए जानना क्यों मुश्किल होता है कि एक व्यक्ति को दिल से पछतावा है? प्राचीनों के लिए जानना आसान नहीं है कि जिस व्यक्ति ने पाप किया है उसे सच में अपने किए पर पछतावा है या नहीं। क्यों? क्योंकि वो उस व्यक्ति का मन नहीं पढ़ सकते, उन्हें सबूतों के आधार पर फैसला करना पड़ता है। कभी कभार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति पाप करने की सारी हदें पार कर देता है, ऐसे में प्राचीनों के लिए उसकी बातों पर यकीन करना शायद मुश्किल हो। पैराग्राफ 17 क, एक उदाहरण देकर समझाइए कि अपनी गलती पर अफसोस करना क्यों काफी नहीं है। सवाल ख, दूसरा कुरिन्थियों 7:11 के मुताबिक सच्चे दिल से पश्चाताप करने के लिए एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मान लीजिए कि एक भाई सालों के दौरान बार बार व्यभिचार करता है। वो इस बारे में अपनी पत्नी से, दोस्तों से और प्राचीनों से छिपाता है। बाद में उसकी गलती का पर्दाफाश हो जाता है। जब प्राचीन उससे बात करते हैं तो वो अपनी गलती मानता है और उसे अपने किए पर अफसोस भी होता है। लेकिन क्या पश्चाताप करने के लिए इतना काफी है? नहीं, प्राचीनों को और भी बातों पर ध्यान देना होगा। उस भाई ने एक बार नहीं बल्कि बार बार पाप किया। उसने खुद आकर अपनी गलती नहीं मानी, किसी और ने उसका पर्दाफाश किया। ऐसे में प्राचीनों को ध्यान देना होगा कि क्या उस व्यक्ति की सोच और चाल चलन में कोई बदलाव है। दूसरा कुरिन्थियों 7:11 में लिखा है, देखो परमेश्वर को खुश करने वाली उदासी ने तुम्हारे अंदर कैसी उत्सुकता पैदा की। हाँ, तुमने खुद पर से कलंक दूर करने का कैसा जज्बा दिखाया। अपनी गलती पर तुम्हें कितना गुस्सा आया। तुम्हारे अंदर डर पैदा हुआ। हाँ, तुम्हारे अंदर कैसी जबरदस्त इच्छा और कैसा जोश पैदा हुआ, और तुमने अपनी गलती सुधारी। तुमने हर तरह से साबित किया कि तुम इस मामले में बेदाग हो। शायद खुद को बदलने में उस व्यक्ति को काफी समय लगे, इसलिए प्राचीन शायद उस व्यक्ति को मंडली से तब तक के लिए बहिष्कृत कर दें जब तक कि वो अपने आप को पूरी तरह नहीं बदल लेता। पैराग्राफ 18 सवाल क, अगर एक बहिष्कृत व्यक्ति को सच में अपने किए पर पछतावा है तो वो क्या करेगा? सवाल ख, ऐसा करने से क्या होगा? अगर एक बहिष्कृत व्यक्ति को दिल से अपने किए पर पछतावा है तो वो हर सभा में आएगा और प्राचीनों की सलाह मानकर प्रार्थना करेगा और बाइबल का अध्ययन करेगा। वो ऐसी हर चीज से बचेगा जिसकी वजह से वो अपना पाप दोहरा सकता है। अगर वो यहोवा के साथ अपने रिश्ते को सुधारने की पूरी कोशिश करेगा तो यहोवा उसे माफ करेगा और प्राचीन भी उसे वापस मंडली का हिस्सा बनाएंगे। पाप करने वाले हर व्यक्ति के हालात एक जैसे नहीं होते, इसलिए प्राचीन हर मामले को ध्यान से जांचते हैं और इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो कठोरता से न्याय ना करें। पैराग्राफ 19 सवाल, दिल से पश्चाताप करने के लिए एक व्यक्ति को क्या करना होगा? जैसा कि हमने सीखा, एक पाप करने वाले के लिए सिर्फ ये कहना काफी नहीं है कि उसे अपने किए पर पछतावा है। उसे अपनी सोच और चाल चलन में बदलाव करना होगा, अपने गलत कामों को छोड़ना होगा और यहोवा के स्तरों के मुताबिक जीना होगा। सबसे बढ़कर उसे यहोवा के साथ अपने रिश्ते को सुधारने के लिए मेहनत करनी होगी। यहेजकेल 33:14-16 में लिखा है, अगर मैं एक दुष्ट से कहूं तू जरूर मर जाएगा, और वो पाप करना छोड़कर न्याय करने लगे, गिरवी की चीज लौटा दे, लूटी हुई चीज वापस कर दे और गलत काम छोड़कर वो सारी विधियां मानने लगे जिन पर चलने से ही इंसान जिंदा रहेगा, तो वो बेशक जीता रहेगा, वो नहीं मरेगा। उसके किसी भी पाप के लिए उससे हिसाब नहीं लिया जाएगा, बल्कि न्याय करने की वजह से वो जीता रहेगा। पश्चाताप करने का बढ़ावा दीजिए। पैराग्राफ 20 और 21 सवाल, जब हमारा कोई दोस्त पाप करता है तो हमें क्या करना चाहिए? यीशु सिर्फ प्रचार करने नहीं बल्कि एक और वजह से धरती पर आया था। उसने कहा, मैं पापियों को बुलाने आया हूं कि वो पश्चाताप करें। लूका 5:32। हम भी चाहते हैं कि जो लोग पाप करते हैं वो पश्चाताप करें। लेकिन अगर हमें पता चलता है कि हमारे दोस्त से कोई पाप हुआ है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने दोस्त की गलती नहीं छिपानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसी का नुकसान होगा और छिपाने का कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि यहोवा सब कुछ देखता है। इसलिए हमें अपने दोस्त से कहना चाहिए कि वो प्राचीनों को सब कुछ सच सच बताए। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता तो हमें प्राचीनों से जाकर बात करनी चाहिए। ऐसा करना जरूरी है, क्योंकि यहोवा के साथ उसका रिश्ता खतरे में है। इतना ही नहीं, ऐसा करके हम अपनी दोस्ती भी निभा रहे होंगे। पैराग्राफ 22 सवाल, अगले लेख में हम क्या चर्चा करेंगे? जब एक व्यक्ति बहुत बड़ा पाप करता है और लंबे समय तक करता रहता है तो शायद प्राचीनों को उसे मंडली से बहिष्कृत करना पड़े, लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि उन्होंने उस पर दया नहीं की? अगले लेख में हम जानेंगे कि यहोवा जब किसी पाप करने वाले को सुधारता है तो उससे कैसे पता चलता है कि वो एक दयालु परमेश्वर है और हम उसकी तरह दया कैसे कर सकते हैं। आपका जवाब क्या होगा? राजा आहाब की कहानी से हम क्या सीखते हैं? ये कैसे पता चलता है कि राजा मनुष्य को अपने किए पर सच में पछतावा था? यीशु ने खोए हुए बेटे की जो मिसाल दी उससे हम पश्चाताप करने के बारे में क्या सीखते हैं? गीत 103 चरवाहे आदमियों के रूप में तोहफे। लेख समाप्त।